Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आधे घंटे के शो में हम शेयर बाजार और अर्थजगत की खबरों पर गौर करेंगे. आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य. नमस्कार एके भी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, थैंक यू.
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा.
Thanks, Subodh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Domestic benchmark indices closed lower in a volatile session. Sensex drops 375 points while Nifty closes near 25,100. RBI directs banks to adopt and scale up operations of unified lending interface. And oil prices rise today amid geopolitical uncertainty and inventory worries.
उतार चढ़ाव भरे कारोबार में देश के शेयर बाजार के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 375 अंक गिरा जबकि निफ्टी लगभग 25,100 पर बंद हुआ. रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अपनाएं और ऑपरेशंस बढ़ाएं. और दुनिया भर में जारी राजनीतिक अनिश्चितता और भंडारण की चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. देश के शेयर बाजार आज थोड़ी सावधानी से कारोबार करते हुए दिखे और दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 गिरावट के साथ बंद हुए. दुनिया भर से आ रहे मिले जुले संकेतों और कंपनियों की आमदनी से जुड़ी आशंकाओं से निवेशकों में उत्साह की कमी देखी गई. आज सेंसेक्स 375 अंक यानी 0.45% गिरकर 82,259 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 50 100 अंक यानी 0.4% नीचे 25,111 पर आ गया. लेकिन बीएससी मिड कैप में 0.07% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की मामूली बढ़त देखी गई.
Domestic stock markets, Sensex and the Nifty 50 closed with a negative bias after a cautious and volatile session. This reflected investor apprehension amid mixed global cues and corporate earnings concerns. At close, the Sensex was down 375 points or 0.45% at 82,259 and the Nifty was down nearly 100 points or 0.40% at 25,111. However, the broader market at the BSE showed a slight uptick. The mid-cap index ended 0.07% up and the small-cap index rose 0.30%.
जी, और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों को शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. सबसे ज्यादा गिरने वाली कंपनियों पर नजर डालें. टेक महिंद्रा में लगभग 0.3%, इन्फोसिस में 1.6% और HCL टेक में 1.2% की गिरावट आई. सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर ये हैं, टाटा स्टील 1.6%, ट्रेंट लगभग 0.7% और टाइटन लगभग 0.5% ऊपर.
In the sectoral indices at the BSE, 11 sectors ended lower. Among the laggards, focused IT slipped 1.47%, IT dropped 1.33% and tech decreased by 1.06%. Among the gainers, power advanced 1.22%, metal added 0.62% and the commodities rose 0.42%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,040 companies declined, shares of 2,007 companies advanced, while shares of 152 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 71 companies hit their 52-week high, while 19 hit their 52-week low.
जी, और रुपए पर नजर डाले लालिमा, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे गिरकर 86.08 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 98.72 पर चल रहा था। बहुत सारे सवाल हैं आज के बाजार को देखते हुए के भी, कि बस क्या कहे। शायद लालिमा भी यही पूछना चाह रही होंगी कि तिमाही नतीजों का असर है क्या रहा बाजार पर, आज असर क्या रहा?
तिमाही नतीजों का असर तो जरूर है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, अभी तक जो जो कंपनियों के रिजल्ट जो आ रहे हैं उसमें जो सेल्स रेवेन्यू और इनकम रेवेन्यू, अर्निंग्स रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू दोनों का अंतर बढ़ता जा रहा है। अगर आप करीबन जो 100 कंपनियों ने रिजल्ट निकाली हैं, अगर आप कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, एक साल पुराना या पीछे का क्वार्टर से, तो 1% वृद्धि हुई है अभी तक उन प्रॉफिट में, और मार्केट प्रॉफिट को देखता है। तो मैं समझता हूँ कि पहला तो कारण यह है कि मार्केट में नरमी इसीलिए है। एक दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो QPI जिसके जिसका रिस्पांस बहुत ही भारी रिस्पांस आया है, करीबन 3 गुना रिस्पांस आया है। 25,000 करोड़ का इशू था, उसमें 75,000 करोड़ का ऑफर आया है। तो मैं समझता हूँ कि उसका जो इम्पैक्ट होता है मार्केट में, थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, लोग पैसा वहां से निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण मैं समझता हूं कि जो अगर आप इंडिया US ट्रेड टॉक्स में, पहले जो हम बात कर रहे थे कि शायद टैरिफ हम 0 की तरफ ले जा सकेंगे एग्रीमेंट के अंदर, पर अब साफ जाहिर है कि जो इंडो US ट्रेड एग्रीमेंट में भी जो टैरिफ जो होंगी US में जो हमारी वस्तुएं जाने वाली, उसमें 0% नहीं होंगी, कम से कम 10% होगी, 10 से 19 के बीच में होगा, क्योंकि इंडोनेशिया का टारगेट 19 है। तो और जो अंतिम जो मैं बात कहूंगा वो है कि जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस हैं और जो RBI गवर्नर्स की जो रिसेंट स्टेटमेंट हैं, उनमें लगता ये है कि शायद अगस्त की जो जो द्विमासिक जो मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी उसमें शायद वो कोई रेट का घटाना इस बार ना हो, और भी आगे शायद पोस्टपोन किया जा सके, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, आउटलुक क्या है, तो आउटलुक अभी साफ नहीं है। सो ये चारों कारणों से मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत नरमी है। सेक्टर की बात छोड़ दीजिए, पर ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कि एक कॉशन का ट्रेंड है। ये चारों चीज के किस तरह से प्ले आउट होती हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि मार्केट आगे कैसे जाएगा।
But there is good liquidity in the market.
Oh, amazing liquidity. That's why the SBI QIP, the Qualified Institutional Placement, has done so well. There is so much money in the system. The neutral rate, which is the natural rate, is close to 4%. So it is lower than the repo rate. So therefore liquidity is there. The CRR cuts have been affected. They are supposed to be affected in 4 phases. So they will bring in more equity. So over 3 lakh crore of liquidity is sloshing in the market. There is no problem with liquidity in the market. The question is of demand. The economy, the demand is slightly still very weak. So therefore, those who want to invest, they are still pulling their horses. They are not fully investing. So even though liquidity is there, but there aren't too many people who are borrowing that money and investing in projects or new services. So there is that demand issue which is still challenging the economy.
And the festivals, maybe any hopes or both? I was just going to ask.
Probably. So festivals will probably...
Are Indian festivals come... They're very handy. They come in very... They're very useful in such a situation.
Oh, absolutely. But you know, over a period of time, like monsoons, even the festival things have become less of an impact on the fortunes of the companies. Their good old days, monsoons used to have a big impact on Indian agriculture. But agriculture has become little immune to the performance of the monsoons. Similarly, over the years that we have seen is that, that earlier the festival bump is to come was very strong. But over the years we have seen that bump is slightly muted because Indians are now celebrating festivals almost on a daily basis.
तो मतलब है कि अब बाजार शायद ज्यादा मैच्योर हो गया,
ज्यादा मैच्योर हो गया.
और चलिए कुछ सेक्टर्स पे अगर नजर डालें हम, तो आज मेटल कंपनीज में तेज रिकवरी रही. थोड़ी अगर देखें हम तो पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बढ़त रही लेकिन फिर बिकवाली आ गई. ये दो चीजें हैं. इंडिगो की बात बाद में करेंगे, पहले इन दो पर बात करें.
देखिए जो मेटल जो है आपका, जो मेटल में जो बेसिक इंडस्ट्रीज की डिमांड स्ट्रांग लग रही है, बेसिक इंजीनियरिंग और काफ़ी जो कंपनी इसमें है कि वो मिनरल सेक्टर में है और मिनरल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. ईवी सेक्टर अच्छा कर रहा है, उसमें भी काफ़ी मिनरल बेस्ड एक इनपुट्स की ज़रूरत होती है. सो इसका एक कारण है कि मिनरल्स मेटल्स सेक्टर अच्छा कर रहा है,
उसकी रिकवरी अच्छी है.
रिकवरी अच्छी.
आपने पहले स्टेट बैंक का नाम लिया था, उसी से जुड़ी हुई बात है कि पीएसयू बैंक्स में आज शुरू में थोड़ी बढ़त थी लेकिन फिर बिकवाली आ गई थी.
नहीं देखिए आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो बैंक के इन्वेस्टर्स जो हैं वो शायद अभी भी थोड़े बहुत कॉशियस हैं और वो ये देख रहे हैं कि जो देखिए जो बैंकिंग व्यवस्था जो है उसमें इंटरेस्ट मार्जिन, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है. हालांकि बैंक का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, स्वास्थ्य है, स्वस्थ बैंक है हमारी सिस्टम इस वक्त. अगर आप SBI को देखते हैं तो उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 14 के ज़रूरत है 14 की, पर वो है 18 में. बैंक ऑफ बड़ौदा के देखेंगे वो भी 17 में है. तो जो बैंकिंग व्यवस्था जो है, पर्टिकुलरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कही आपने, वो स्वस्थ है. पर तब भी जो लोन देने की जो एक, जिससे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े, वो जो डिमांड अभी भी उतनी नहीं आई है. बहुत लोग ये कह रहे हैं कि लोग बैंक से लोन कंपनियां नहीं ले रही हैं, उनके पास बहुत सारे अलग रास्ते खुल गए हैं. कॉरपोरेट डेट मार्केट आ गया है, बॉन्ड मार्केट आ गया है, तो शायद बैंकिंग व्यवस्था को ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और मार्केट्स वही चीज को शायद एसेस करके रिफ्लेक्ट कर रही है.
राइट. एंड मिस्टर भट्टाचार्य, व्हाट एवर हैपेंड टू द IT सेक्टर, ड्रॉप 1.33%? इज इट बिकॉज आर IT, इवन दो वी आर डूइंग वेरी वेल अदरवाइज एंड वी हैव काइंड ऑफ अ मोनोपोली ग्लोबली, बट आर IT इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेज इन US एंड यूरोप where it's exported?
Yes, the global market, they are a little uncertain right now. That is one factor that you mentioned. The second factor is the IT industry in India is going through a kind of a churn on the manpower front. The benching, the problem of too many people already benched, that absorption is posing to be a big challenge, and which is poses costs on the company's bottom line. And the third and the most important thing is all IT companies are struggling with a beast whose size and character they still don't know, which is artificial intelligence.
Right.
How they will impact their way of functioning. So there's a multifaceted challenges with the IT sector facing, and that is why you are seeing the IT sector, although their performance, you know, if you take Wipro's performance today, is not very good. There's a double-digit growth, Wipro. And in spite of that, you see IT sector hasn't done too well. Even TCS, which came out of the result, has done reasonably well. But then, as I said, those three factors are influencing the investors' approach to the IT sector companies.
Right.
जी, एक और शेयर पे खास आपकी टिप्पणी चाहूँगा. इंडिगो आज 3% डाउन, क्योंकि पहले 15 दिनों के नतीजे आए हैं, यात्रियों की कमी है.
देखिए ये तो एक एविएशन सेक्टर जो है ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है. तमाम आशंकाएं हैं. जो ट्रैफिक उससे कम नहीं हुई है, मैं उससे ही आश्चर्यजनित हूँ मैं, क्योंकि ट्रैफिक शायद इससे ज़्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी हो रही है जो एयरलाइंस जो है इंडिगो जैसी कंपनी जो अपनी सेफ्टी मेंटेनेंस के ऊपर गर्व करता है, वैसी कंपनियां जो कि उनके पायलट, उनके दो दो ऐसे इंसिडेंट पिछले दो तीन दिन में ऐसे हुए जहां पे उन्होंने उनकी इंजन फेलियर से वो एक उनका फ्लाइट जो जो गोवा जा रहा था वो बॉम्बे जाकर लैंड किया, आज और एक ऐसा ही हादसा हुआ है। तो जो पायलट्स जो हैं वो घबराए हुए हैं, और जो AIIB का रिपोर्ट है वो उसमें कोई सहायता नहीं है, बल्कि कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया है। इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज इसका पूरा इस्तेमाल करके ऐसे रिपोर्ट्स ला रही हैं जिससे कि जो कॉन्फिडेंस लेवल और भी घट रहा है। तो आज की जो तारीख में इंडिगो की शेयर की बात आपने की, उसका साफ कनेक्शन जो एविएशन सेक्टर में 12 जून की वो एयर क्रैश के बाद जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है, अनसर्टेनिटी, पायलट्स बिहेवियर, AIIB की रिपोर्ट, सब चीज
सबका
मिला जुला असर आज आपको इंडिगो को मिला
जी। और सेंसेक्स और शेयर बाजार की चर्चा के अंत में आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं डिफेंस स्टॉक्स पे।
जरूर, डिफेंस देखिए, डिफेंस एक लॉन्ग टर्म प्ले है, पर जो मार्केट है उसको बहुत जल्दी भी होती है मार्केट में। मैं समझता हूँ कि जो डिफेंस में जो उछाल जो आया था वो पहलगाम के बाद और इवन ग्लोबल जो एनवायरनमेंट में जो गाजा में झगड़ा हो रहा है यूक्रेन में रशिया के,
बाजार तो दिख रहा था,
बाजार दिख रहा था बहुत ज्यादा। और इंडियन डिफेंस कंपनीज, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही थी और मार्केट उनका शेयर बढ़ रहा था, सरकार को बेच रही थी और विदेश सरकार को भी बेच रही थी। हालांकि ऐसे मैजागन डॉग जैसे कंपनी जो एक लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसने एक श्रीलंका में एक पूरा उन्होंने एक पोर्ट का एक जहाँ पे वो बनाते हैं जो पनडुब्बियाँ बनाते हैं उनको उन्होंने खरीद लिया। सो कॉन्फिडेंस काफ़ी है, सेंटिमेंट अच्छा है, पर जैसे मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्ले है, ये शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस के साथ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का एक तालमेल अभी नहीं हो रहा है, इसीलिए जो जिस इशू की आपने चर्चा की
बाजार जो थोड़ा नरम पड़ रहा है जी। आइए,
पर अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, डिफेंस इज ए सेफ बेट, लॉन्ग टर्म स्टोरी है इसमें।
वी आर एक्सपोर्टिंग सो मच नाउ ऑफ आवर डिफेंस इक्विपमेंट टू अदर कंट्रीज
जी। आइए एशियाई और यूरोपीय बाजार पर नजर डालते हैं। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिलाजुला रुख रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.7%, जापान के निक्केई में 0.6%, चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.37%, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% की बढ़त देखी गई, लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.08% गिरकर बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में सकारात्मक रुख था। समाचार लिखे जाने तक लंदन का फुटसी लगभग 0.5% ऊपर था, फ्रांस का कैक 0.8% ऊपर चल रहा था, जर्मनी के डैक्स में 0.35% की बढ़त थी।
Look at the US stocks now. Well, US equity indexes advanced slightly yesterday as markets calmed following President Donald Trump's statement that he's highly unlikely to fire Federal Reserve Chair Jerome Powell. On Wall Street, the Dow Jones Industrial Average finished up 231 points at 44,255, while the S&P 500 rose nearly 20 points to 6,263, and the Nasdaq Composite added rose 0.26% to 20,730. So, Mr. Bhattacharya, after, post 20th Jan, President Donald Trump has made so many statements that there is a renewed interest in at least which way the US markets are going, and because they have a ripple effect to the global economy. How do you view this statement?
This statement, probably has calmed the market for some time, but I think it's only a short-term calm, because while he may be saying today that he is not going to fire Jeremy Powell, but he is planning to set up a shadow governor, Fed governor. So now if a shadow Fed governor is going to be in place, it is essentially meaning that his term will not be extended, and the shadow governor will keep making statements which will probably provide an indication and a counter factual and a counter influence on what the Fed governor does. So I think this is a temporary reprieve. This uncertainty and volatility will continue because that's what the US President Trump revels in.
Right. Going on, well, the Reserve Bank of India, let's talk about our, say, back home rather. The Reserve Bank of India has directed banks to adopt the Unified Lending Interface, ULI, platform at the earliest and to scale up their operations. Here's a report. Let's listen in.
Secretary of the Department of Financial Services M. Nagaraju and Deputy Governor of the RBI T. Ravi Shankar co-chaired a review meeting in Mumbai yesterday with the managing directors and CEOs of select banks and non-banking financial companies to assess the progress of ULI, which is positioned as the UPI for loans. Secretary Nagaraju highlighted ULI as a key component of the digital public infrastructure for the lending ecosystem and underscored the need for its rapid adoption. He urged lenders to scale up their operations, enable end-to-end digital loan journeys, and make full use of the data and services available through the ULI platform. With Sudhir Yadav's report, Valsa Williams, News Desk.
Mr. Bhattacharya, UPI, we have made history. We are the world's largest country where we are transacting through UPI. How can ULI make a difference and how does it have an edge over?
Well, as you rightly pointed out, UPI was an unqualified success. It really strengthened our digital public infrastructure. And ULI is conceived in the same way. It was talked about first during the tenure of the former RBI governor, Shaktikant Das, when he was there, and it was his favorite project. It is gaining traction, but ULI is not like UPI. UPI is a payment infrastructure. Mm-hmm. ULI is a lending infrastructure. And in lending, there are many factors that are not necessarily at play when it payments mechanism works. So we have to see how the lending ecosystem is adequately captured mm-hmm. with all the checks and balances through a digital interface. And it's only time that will tell us that how well the ULI system is embraced without pitfalls, without chances of a failure. Because remember, while a payment is from one consumer to another consumer, but in lending, it is from the bank to a customer. And if the money goes into the wrong hands through the ULI without the necessary checks and balances, the bank's financial health yes. will probably suffer. So I think ULI is a great initiative, but very ambitious, and we need to be absolutely sure that ULI succeeds as a mechanism, as a platform for making more loans accessible to more deserving candidates.
Also yeah. because collaterals are involved.
Collaterals are involved.
बिल्कुल क्योंकि अभी जो कर्ज देने की जो जो प्रावधान है बैंकों के जो शर्तें हैं उनकी वो काफी सख्त हैं काफी चेक्स हैं उसके लिए तो उनको कैसे यूएलआई में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ये सबसे बड़ी चुनौती
सबसे बड़ी ये है क्योंकि बैंक की जो स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी एक चुनौती है उस स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि हम एक यूएलआई को सक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें एक एक द्वंद्व है और उस द्वंद्व को मैं मानता हूं कि उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है
जी आइए अगली खबर पे चलते हैं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने ऊर्जा उपलब्धता सामर्थ्य और स्थिरता की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है नई दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने उन देशों की सूची का विस्तार किया है जहां से वह ऊर्जा आयात करता है उन्होंने कहा कि सरकार ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी राउंड 10 के तहत 2,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन का पता लगाएगी उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक हाइड्रोकार्बन की खोज का इलाका बढ़ाकर 5,00,000 वर्ग किलोमीटर करना है और 2030 तक उसे 10,00,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाना है
There is availability of oil, more than enough. There is more and more crude oil coming on the market from the Western Hemisphere. That is another very important fact. If you have more supply coming in, the price will be as anticipated. टुडे द प्राइस 68.5. आने वाले समय में मैं इसी रेंज में समझता हूँ कच्चे तेल के दाम रहेंगे. हमारा हिसाब है ये 65-70 के बीच में ही रहेगा. अगर इसमें चेंज आएगी तो चेंज 70 के ऊपर नहीं आएगी, ये 65 से नीचे आएगी.
जी, तो ये जो बातें हैं, अभी एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन एकरेज बढ़ाने की जो बात हो रही है कि हमें इसको इस साल के अंत तक 5 लाख वर्ग किलोमीटर करना है और 2030 तक 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक करना है. और जैसा अभी कुछ साल पहले तक जब हम हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बाड़मेर उसमें एक बड़ा माइलस्टोन आया, और अभी हम सुन रहे हैं अब अंडमान की बात, अंडमान सागर.
आपने एकदम सही कहा कि एक्सप्लोरेशन जो है, एक्सप्लोरेशन की जो गति जो है उसे हमें और भी बढ़ानी होगी, क्योंकि
निर्भरता तो कम करनी पड़ेगी विदेशों पर.
इस वक्त अगर 89 और करीबन 99% हमारा जो निर्भरता जो है वो बाहर के तेलों के ऊपर है. अगर रशिया अगर हमें यूराल देता है कम दाम में तो हमें एक अच्छा मौका आता है एक्सपोर्ट करने का, दाम बढ़ाने का, सब कुछ करने का. पर ऐसी निर्भरता हमारे लिए ठीक नहीं है. हम आत्मनिर्भरता की
ऊर्जा के मामले में
बहुत जरूरी है, और एक्सप्लोरेशन में जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए हम अगले 50 साल में हम आगे और निकल सकते हैं.
राइट, मूविंग ऑन टू the US again. US President Donald Trump has said that the ongoing negotiations between India and the United States for a much anticipated interim trade could be sealed soon. Mr. Trump said the talks are on track and the proposed deal could provide American companies greater access to the Indian market in line with the trade pact between the US and Indonesia. He said that US has full access into Indonesia and India is basically working along that same line. A slightly tricky question, if I may ask. We don't have much time, Mr. Bhattacharya. US-Indonesia deal versus Indo-US deal.
I think the US-Indonesia deal has set a kind of a benchmark by against which we can speculate what kind of deal we may get. If Indonesia has been given a 19% tariff broadly, then I would say that our tariff. Because the U.S. under all his agreement is not giving any duty-free access to its market anymore. 10% seems to be the benchmark, the bottom. So what we can expect is something between 10 and 19. So my sense is that it will be better than the deal that was offered to Indonesia. But it will not be a 0% access to the U.S. market because the new norm, the Trumpian norm is that the U.S. market will not be accessible at 0%. Minimum tariff will be 10%.
And as usual, Indonesia is buying jets from them and energy from them. And
well, we are also buying oil and gas from the US now.
Right, right.
चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है.
All right. Well, oil prices rose today even as global trade tensions appeared to cool, while analysts pointed to low inventories and renewed West Asia risks and factors which were supporting the market. Brent crude was trading over 0.2% up at $68.68 per barrel, while WTI crude was also trading over 0.5% up at $66.74 per barrel when reports last came in. Talking about gold and silver in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.6% lower at 97,620 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was also trading over 0.1% down at 1,11,700 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.6% गिरकर 97,235 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1,11,630 रुपये प्रति किलो पर कायम थी. एके भट्टाचार्य साहब मार्केट मंत्र में आने और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
नमस्कार, धन्यवाद.
Thank you very much, sir. Well, before we close, is a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices closed lower in a volatile session. Sensex drops 375 points while Nifty closes near 25,100. RBI directs banks to adopt and scale up operations of unified lending interface. and oil prices rise today amid geopolitical uncertainty and inventory worries. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra signing off. So, namaskar.
Namaskar. Market Mantra.